12 पद पाठ से संहिता पाठ बनाना। पद पाठ से संहिता पाठ बनाने में इन नियमों का ध्यान रखें। 1 पद पाठ के सभी पदों में संधि नियमों का प्रयोग करें। 2 पद पाठ में प्रयुक्त सभी इति शब्दों को हटा दें, अवग्रह चिन्हों को भी हटा दें। 3 मंत्र को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में बांट लें। 4 संधि करते समय प्लुत आदि के लिए कुछ संकेत करने की आवश्यकता होती है। 5 स्वर नियमों का ध्यान रखते हुए पदों पर स्वर चिन्ह लगावें। इसमें जात्य स्वरित का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिससे पहले उदात्त स्वर न हो उस स्वरित को जात्य स्वरित कहते हैं, यह स्वतंत्र स्वरित है। यदि जात्य स्वरित के बाद कोई उदात्त होता है तो जात्य स्वरित में कंप होता है। यदि जात्य स्वरित ह्रस्व स्वर पर होगा तो कंप को 1 और यदि दीर्घ स्वर होगा तो 3 इस प्रकार संख्या से निर्देश करते हैं। 1 और 3 दोनों के ऊपर नीचे चिन्ह रहता है, ऊपर स्वरित का नीचे अनुदात्त का। 1 सूचित करता है कि जात्य स्वरित ह्रस्व स्वर है और 3 सूचित करता है कि वह दीर्घ स्वर है। 3-6 पदांत ए और ओ के बाद अ होगा तो संधि नियम नहीं लगता है, बाद में अन्य स्वर होंगे तो संधि नियम लगेंगे। 7 जहां पद पाठ में इति लगा है वहां संधि संहिता पाठ में संधि नियम नहीं लगते हैं, केवल संबोधन के ओ में संधि नियम लगते हैं। 8 आन के बाद कोई स्वर होगा तो आन को आ हो जाता है। 13 स्वर संबंधी विशिष्ट नियम। 1 स्वर 3 है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। 2 3 स्वरों के चिन्ह। 1 उदात्त, उदात्त वर्ण पर कोई चिन्ह नहीं होता जैसे क। 2 अनुदात्त, अनुदात्त वर्ण पर नीचे पड़ी लकीर खींची जाती है जैसे क। 3 स्वरित, स्वरित वर्ण पर ऊपर खड़ी लकीर खींची जाती है जैसे क। क्व पाश्चात्य पद्धति में केवल उदात्त वर्ण पर ऊपर टेढ़ी लकीर बाईं ओर झुकी हुई लगाई जाती है जैसे इंग्लिश शब्दों पर बलाघात के चिन्ह लगाया जाता है। अनुदात्त और स्वरित पर कोई चिन्ह नहीं लगाते, केवल स्वतंत्र स्वरित पर दाहिनी ओर झुकी हुई टेढ़ी लकीर ऊपर लगाते हैं। मान ले कि क एक शब्द है, उस पर भारतीय और पाश्चात्य पद्धति से इस प्रकार चिन्ह लगेंगे। गुणा का अर्थ है कोई चिन्ह नहीं लगेगा। पद्धति उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वतंत्र स्वरित। 1 भारतीय गुणा क क क क्व पाश्चात्य का क्वा। 3 एक उदात्त स्वर। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक शब्द में एक उदात्त स्वर होता है, शेष सभी वर्ण अनुदात्त होते हैं। उदात्त पर उदात्त का चिन्ह लगेगा और अनुदात्त पर अनुदात्त का। अनुदात्त को निघात भी कहते हैं। 4 उदात्त से पहले अनुदात्त, उदात्त और स्वतंत्र स्वरित से पहले वाला वर्ण अनिवार्य रूप से अनुदात्त होगा। 5 उदात्त के बाद स्वरित, उदात्त के बाद पहले वाले अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। सूचना 1 यह स्वरित स्वतंत्र स्वरित नहीं है अपितु पराश्रित स्वरित है। 2 यदि अनुदात्त के बाद फिर उदात्त है तो वह अनुदात्त अनुदात्त ही रहेगा, उसे स्वरित नहीं होगा। 6 स्वरित के बाद के अनुदात्तों पर चिन्ह नहीं। यदि एक उदात्त के बाद कई अनुदात्त हैं तो उदात्त के बाद वाले पहले अनुदात्त को स्वरित करेंगे और उसके बाद वाले अनुदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। ऐसे बिना चिन्ह वाले अनुदात्तों को एक श्रुति या प्रचय कहते हैं। इसके बाद जहाँ उदात्त वर्ण होगा उससे पहले वाला अनुदात्त अनुदात्त ही रहेगा। 7 दो स्वर, दो उदात्त स्वर। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ एक ही पद में दो उदात्त स्वर होते हैं, तवई प्रत्यांत शब्दों में प्रथम और अंतिम वर्ण पर उदात्त के चिन्ह लगेंगे जैसे ए तवई, इसमें ए और वई उदात्त है। ख देवतावाचक दो शब्दों में समास होने पर दोनों शब्दों में उदात्त चिन्ह लगेगा जैसे मित्रा वरुण, इसमें त्रा और व उदात्त है। ग वनस्पति बृहस्पति आदि पति अंत वाले समस्त पदों में दो उदात्त रहेंगे जैसे बृहस्पति, इसमें ब्री और प उदात्त हैं। 8 अन्य उदात्त स्वर वाले स्थान क सामान्यतया तत्पुरुष समास में अंतिम वर्ण उदात्त होता है। ख बहुव्रीही समास में पूर्व पद उदात्त होता है। ग द्वंद समास में उत्तर पद अनुदात्त उदात्त होता है। घ समास में एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर प्रथम पद उदात्त होता है। ग यदि क्रियावाक्य या पद के प्रारंभ में होगी तो उस पर उदात्त होता है। च यदि संबोधन के तुरंत बाद क्रिया आ तो उस पर उदात्त होती है। छ मुख्य वाक्य में उपसर्ग उदात्त होता है। ज यदि दो उपसर्ग हो और दोनों स्वतंत्र हो तो दोनों उदात्त होते हैं। छ साधारणतया बहुव्रीहि अव्ययी भाव और द्विरुक्त समास में प्रथम पद पर उदात्त स्वर रहता है तथा तत्पुरुष कर्मधारय और द्वंद्व समास में बाद वाले पद पर उदात्त स्वर रहता है। यह अस अंत वाले शब्द यदि नपुंसक लिंग में हो तो धातु पर उदात्त स्वर रहता है। यदि वे पुल्लिंग होंगे तो अस प्रत्यय उदात्त होता है। ट इष्ट और ईयस प्रत्यय लगने पर मूल शब्द पर उदात्त होता है। ठ वाक्य या पद के आदि में तिगंत पद अथवा धातु रूप उदात्त होता है। यदि वह लंग लुंग का रूप होगा तो अनिवार्य रूप से प्रारंभ का अ उदात्त होगा। नौ अनुदात्त स्वर निम्नलिखित स्थानों पर अनुदात्त स्वर ही रहता है। क सर्वनाम त्व अन्य सम कुछ और एन एतत् का एन के सभी रूप अनुदात्त होते हैं। ग ये निपात सदा अनुदात्त होते हैं। इम सीम च वा उ घ चिद स्म स्विद ह व भल समह। घ संबोधन यदि वाक्य के प्रारंभ में नहीं है तो अनुदात्त होगा। ग क्रियापद तिगंत यदि वाक्य या पद के प्रारंभ में नहीं है तो वह अनुदात्त होगा। च इदम शब्द के अ वाले रूप अनुदात्त होते हैं। यदि वे पाद के प्रारंभ में होंगे तो उदात्त होंगे, जैसे अनेन अस्य अस्मिन एषाम आदि। छ ये निपात अनुदात्त होते हैं, यथा नु कम सु कम ही कम। द स्वरित स्वर इसके तीन भेद हैं। क पराश्रित स्वरित उदात्त के बाद आने वाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है, यह पराश्रित स्वरित है। वेदों में अधिकांश यही स्वरित है। ख स्वाश्रित या स्वतंत्र स्वरित यह पूर्ववर्ती उदात्त पर निर्भर नहीं होता है, अतः इसे स्वतंत्र स्वरित कहते हैं। यह किसी प्रकार की संधि के कारण होता है, अतः दो स्वरों के मिश्रण से जन्य स्वरित संधि है। पूर्ववर्ती उदात्त पर निर्भर न होने के कारण इसे स्वतंत्र स्वरित नाम दिया गया है। इसको ही जात्य स्वरित भी कहते हैं। ग संधि जन्य स्वतंत्र स्वरित इसकी तीन अवस्थाएं हैं। ये हैं एक प्रश्लेष दीर्घ गुण वृद्धि संधि। प्रश्लेष का अर्थ है दो स्वरों का मिश्रण। दीर्घ गुण और वृद्धि इन तीनों संधियों का समन्वित नाम प्रश्लेष संधि है। प्रश्लेष स्वरित केवल उदात्त ई धन अनुदात्त ई बराबर ई वाले स्थान पर ही होता है, जैसे श्रुचि धन इव श्रुचिव ची धन स्वरित है। अन्यत्र यदि संधि होने वाले दोनों स्वरों में एक पर भी उदात्त है तो एकादेश वाला स्वर उदात्त ही होगा। दो क्षैप्र यण संधि। यण संधि का ही वैदिक नाम क्षैप्र संधि है। यदि ई और उ उदात्त हैं तथा परवर्ती स्वर अनुदात्त हैं तो यण संधि होने पर अगला अनुदात्त स्वरित हो जाएगा। इसको क्षैप्र स्वरित कहते हैं, जैसे नूधन इंद्र न्विंद्र, इसमें ई स्वरित हो गया है। तीन अभिनिहित पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि को ही अभिनिहित संधि कहते हैं। पदांत ए या ओ के बाद यदि उदात्त अ होता है और उसे पूर्व रूप होता है तो वह पूर्ववर्ती ए या ओ को उदात्त बना देता है। यदि पूर्ववर्ती ए या ओ उदात्त हैं और परवर्ती अ अनुदात्त है तो पूर्ववर्ती ए या ओ अभिनिहित स्वरित हो जाएगा, जैसे ते धन अवर्धन्त ते अवर्धन्त। ते में ए अभिनिहित स्वरित है। स्वतंत्र स्वरित या जात्य स्वरित क उदात्त या स्वतंत्र स्वरित के स्थान पर यण होगा तो बाद के अनुदात्त को स्वरित हो जाता है, जैसे कु धन अ बराबर क्व वीरिधन अम वीर्यम ख। उदात्त के बाद अनुदात्त होगा तो संधि होने पर स्वरित शेष रहेगा। सूचना स्वतंत्र स्वरित के ठीक बाद यदि उदात्त स्वर होता है तो कंप होता है। इसके प्रदर्शनार्थ जात्य स्वर यदि ह्रस्व पर हो तो उसके आगे एक संख्या लिखते हैं और उसके ऊपर स्वरित का तथा नीचे अनुदात का चिन्ह लगाते हैं। यदि जात्य स्वर दीर्घ है तो इसके आगे तीन संख्या लिखते हैं तथा ऊपर नीचे पूर्ववत चिन्ह लगाते हैं, जैसे अपसुधन अंतः अपस्वंतः रायोधन अवनिः रायोतीन वनिः। संधि स्वर एक यदि स्वर का स्वर उदात्त है, यदि बाद का स्वर उदात्त है तो दोनों को मिलाकर उदात्त स्वर ही होगा। दो यदि बाद का स्वर अनुदात्त है तो संधि होने पर स्वरित होगा, बाद में उदात्त स्वर बाद में अनुदात्त स्वर। एक उदात्त धन उदात्त बराबर उदात्त एक उदात्त ई धन अनुदात्त ई बराबर प्रश्लिष्ट ई दो अनुदात्त धन उदात्त बराबर उदात्त दो उदात्त ई ऊ धन अनुदात्त बराबर क्षैप्र स्वरित तीन जात्य स्वरित धन उदात्त बराबर उदात्त उदात्त ए ओ धन अनुदात्त अ बराबर अभिनिहित ए ओ चार चौदह पद पाठ में स्वर चिन्ह लगाना पद पाठ में प्रत्येक पद को स्वतंत्र मानकर स्वर लगाया जाता है इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दें एक पद में पहले उदात्त ढूंढें यदि कोई उदात्त है और उदात्त से पहले कोई अक्षर है तो वह अनुदात्त होगा और बाद में कोई अक्षर है तो वह स्वरित होगा दो यदि उदात्त के बाद कई अक्षर हैं तो उदात्त के ठीक बाद वाले अक्षर को स्वरित करें और उसके बाद वाले अनुदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा तीन यदि एक ही अक्षर है और वह उदात्त है तो उस पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा जैसे क चार यदि एक या अनेक अक्षर केवल अनुदात्त हैं तो उन सब पर अनुदात्त का चिन्ह लगेगा जैसे क क क क पाँच क एक उदात्त क एक अनुदात्त क ख दो उदात्त क दो अनुदात्त क तीन तीन उदात्त ग क क क तीन अनुदात्त क क घ दो में प्रथम उदात्त क दो में प्रथम अनुदात्त क ग तीन में प्रथम उदात्त क तीन में द्वितीय उदात्त क तीन में तृतीय उदात्त क चार में प्रथम उदात्त क चार में द्वितीय उदात्त क चार में तृतीय उदात्त क चार में चतुर्थ उदात्त क